कल हमने श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि मनाया। आज जो है इस उत्सव को कहते हैं जगन्नाथ मिश्र उत्सव। जिस प्रकार जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाते हैं, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उसके अगले दिन उनके पिता नंद महाराज ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया और इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अगले दिन उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, वो जगन्नाथ मिश्र उत्सव। भागवत में वर्णन है क्यों नंद महाराज ने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया और उसका उद्देश्य क्या था। केवल दो था बस, और हमारे भी सारे उत्सव जो हम मनाते हैं उनका ये दो उत्सव उद्देश्य होना चाहिए। विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च। पहला उद्देश्य था कि भगवान प्रसन्न होए। इस तरह से हम से उत्सव मनाए कि भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणे। हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। और दूसरा, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस वस्तु के लिए, उस व्यक्ति के लिए, या उस समय के लिए, या उस उन लोगों के लिए भगवान की आशीर्वाद मिले। नंद महाराज ने जब उत्सव मनाया दो उद्देश्य था, भगवान प्रसन्न हो। नंद महाराज अपने बच्चों को भगवान नहीं मानते थे, वो बोल देते तो मेरा काना है, तो विष्णु को प्रसन्न करना है, नारायण को प्रसन्न करना है, वात्सल्य भाव के कारण। तो भगवान को प्रसन्न करना और मेरे पुत्र को आज बहुत आशीर्वाद मिले, लोग आए, वैष्णव लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, सब लोग, और मुझे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे, खा बहुत कृपा मिले, कृपा मिले, आशीर्वाद मिले। इसी तरह से जगन्नाथ मिश्रा ने भी ये उत्सव मनाया। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में चार पांच श्लोकों में, बहुत सारे श्लोक हैं पर चार पांच श्लोक संक्षिप्त में बस 5-10 मिनट चर्चा करेंगे। वहां वो कहते हैं कि किस तरह से जगन्नाथ मिश्रा और सची माता की परिस्थिति क्या थी, कैसी थी उनकी, किस तरह से उन्होंने मनाया। और ये जो घटना हुई इसको सुनने का लाभ क्या है और जो नहीं सुनते उनका दशा क्या है। आइछे सची जगन्नाथ पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ पूर्ण होइला सकल वांछित धन धान्य भरे घर लोकमान्य कलेवर दिने दिने होए आनंदित। ये सची माता और जगन्नाथ मिश्रा की स्थिति कैसी थी बता रही। आइछे सची जगन्नाथ, इस तरह से सची माता और जगन्नाथ मिश्रा पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ, कैसे पुत्र थे उनके, लक्ष्मी के नाथ, साक्षात भगवान प्रकट हुए। पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ पूर्ण होइला सकल वांछित, उनकी जो भी इच्छा थी वो पूर्ण हो गए जब भगवान पुत्र रूप में जन्म लिए। धन धान्य भरे घर, यहां तक कि देवतागण भी बहुत ही मूल्यवान उपहार देने लगे और उनके घर में धन धान्य से भर गया पूरा। पर हम सुनते हैं, हाँ, लोकमान्य कलेवर, और सब उनको गुणगान करने लगे, देवतागण जगन्नाथ और सच्ची माता का गुणगान करने लगे, पूरे नवद्वीपवासी गुणगान करने लगे, अरे कितने सौभाग्यशाली हो, और पूजा करने लगे उनकी। लोकमान्य कलेव दिने दिने होए आनंदित, के दिन ब दिन उनका आनंद बढ़ता गया, ये उनकी परिस्थिति थी। फिर कहते हैं उनके मामा, महाप्रभु के मामा यानी सच्ची माता के मां के भाई जो थे, चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर, उनका घर भी वहीं था, तो उन लोगों ने मदद किया जो भी रीति रिवाज करना था। तो फिर जगन्नाथ मिश्र का वर्णन करते हैं, मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दांत धन भोगे नहीं अभिमान पुत्रेर प्रभावे यत धन आसी मिले तत विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। बहुत सुंदर, बहुत सारे धन संपत्ति उनको उपलब्ध हुआ महाप्रभु के जन्म के साथ, पर अंत में वो जैसे थे वैसे ही थे। साधारणतः हम कोई कहानी पढ़ते, एक गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब गरीब, एक गरीब ब्राह्मण था, कहानी ऐसे शुरू होती है ना, सुदामा ब्राह्मण। बाद में उसको संपत्ति मिली, पर फिर भी उसका जीवन की जो शैली थी वैसे ही थी। तो मिश्र वैष्णव शांत, जगन्नाथ मिश्र जी कैसे थे, वैष्णव और शांत, बड़े शांत, अलंपट शुद्ध दांत, अलंपट दांभिकता नहीं थी उनमें, शुद्ध थे, उनका विचार उनके आचार रहन सहन सब शुद्ध था, और दांत पूर्ण रूप से आत्मसंयमी थे। धन भोगे नहीं अभिमान, धन भोग करने में उनको अभिमान नहीं था, इच्छा भी नहीं थी। तो इतने सारे धन संपत्ति जब आया, लक्ष्मीनाथ आए घर में, तो लक्ष्मी जी आएंगी वहां, इतनी सारी संपत्ति आई तो किए क्या उन्होंने, पुत्रे रो प्रभावे यतो धन आसी मिले तो, पुत्र के प्रभाव से जितने सारे धन उपलब्ध हुए, विष्णु प्रीते द्विजे दे न दान, जो जो आया सबको दान देके भेज दी, बाद में जितना था उतना ही था। प्रभुपाद कहते हैं एक ब्राह्मण का लक्षण क्या है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, पठन पाठन शास्त्रों का अध्ययन करना बड़ी अच्छे तरह से, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, केवल विद्वत्ता नहीं आचार में भी अच्छे तरह से जीवन में उतारना, पठन और पाठन पूरे संसार को सिखाना, पूरे समाज को बांटना, ये ज्ञान मुफ्त में पैसे ले लेंगे, एजुकेशन फ्री था पहले, अभी वो किसी को पढ़ाना है तो कितना कर्ज लेना पड़ता है, नहीं कर्जा लेना पड़ता है, नहीं चाहिए। तो पठन पाठन, कोई भी योग्य व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है सिखाता है, पठन पाठन और यजन याजन यज्ञ करना, भगवान की सेवा करना और लोगों को सिखाना, उनके घर को कैसे मंदिर बनाए, उनके हृदय को कैसे मंदिर बनाए, पठन पाठन यजन याजन। और क्योंकि दिन भर शास्त्रों के अध्ययन और भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उनका निर्वाह कैसे होता था, दान, कोई देता था कुछ सेवा करा के, कुछ सेवा में दान और प्रतिग्रह, और वो जो मिलता था उसमें जितना जरूरी उतना रख के वापस दान दे देना, उसको रखते नहीं थे, कल की चिंता नहीं, आज हो गया हो गया, बस बाकी सब दान में दे दिया। जनरली हम देखते भिक्षा करते थे, तो ये हरे कृष्ण ये परिस्थिति थी। फिर तीसरे श्लोक में वर्णन है, हरे कृष्ण, लग्न गणी हर्षमती
नीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते किछु कहिला मिश्रे रे महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंगे भिन्न भिन्न देखिए तारिवे संसारे।
लग्न गणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती ही सच्ची माता, चैतन्य महाप्रभु के माता के पिता थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के भी निपुण थे। तो लग्न उन्होंने देखा उसकी कुंडली नीलांबर और हर्षमती, जब देखे महाप्रभु के कुंडली देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। गुप्ते किछु कहिला मिश्रे रे, जगन्नाथ मिश्रा को बुलाए एकांत में और बड़े गुप्त में कहने लगे महापुरुषेर चिन्ह, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में जो जन्म लिया है पुत्र महापुरुषेर चिन्ह, इसके सारे चिन्ह महापुरुष के हैं। लग्ने अंगे भिन्न भिन्न, जो समय है वो भी बड़ा शक्तिशाली है, अनुकूल है, और अंग में जो महापुरुष के सारे चिन्ह हैं वो सब मौजूद हैं। देखी यही तारीवे संसारे, बोले ये व्यक्ति जो है पूरे संसार को तारेगा, इसीलिए इसका नाम विश्वंभर, क्योंकि पूरे विश्व का ये भरण पोषण करेगा। भगवान का दूसरा नाम है विश्वंभर, शास्त्रों में आता है विश्वंभर, भरण पोषण करने वाले पूरे संसार का। और फिर कहते हैं आइछे प्रभु शचि घरे कृपाए कोइला अवतारे जेई इहा करो ये श्रवण गौर प्रभु दयामय तारे होए न सदय से ही पारे तहार चरण। ये जो शचि के घर में महाप्रभु का जन्म हुआ, कृष्ण कोइला अवतारे, भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित हुए, जेई इहा करो ये श्रवण, जो इसका श्रवण किया, कल हमने उसका विस्तृत रूप से चर्चा किया, कल शाम को भी थोड़ी बहुत चर्चा की, आज भी कर रहे हैं। तो जिसने इसका श्रवण किया है, गौर प्रभु दयामय, महाप्रभु बड़े दयामय हैं, तारे होए न सदय, उस व्यक्ति के प्रति सदय होकर, से ही पाए तहार चरण। तो भले आप समझे या नहीं समझे हो, कल और आज अटेंडेंस हो गया तो आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण उपलब्ध हो जाएगा, से ही पाए तहार चरण। और जो नहीं सुना उसका क्या, पाइया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुण हेन जन्म तार व्यर्थ होइला पाइया अमृत धुनी पिए विष गर्त पानी जन्मिया से केने ना मोइला। बोले जिसने मनुष्य जन्म पाया और महाप्रभु का गुणगान नहीं सुना, हेन जन्म तार व्यर्थ होइला, बोले व्यर्थ हो गया, मनुष्य जन्म पाया और राधा कृष्ण को न भजे, जानबूझ के विषय विषय किया, अमृत छोड़ के आपने विषपान किया, जन्मिया से केने ना मोइला, जल्दी मर जाता तो अच्छा था, जिंदा क्यों है, चलता फिरता मुर्दा है। चलता फिरता मुर्दा मतलब कौन, भूत, भूत लोगों का शरीर नहीं होता, ऐसे घूमते रहते, और अपने को भी तकलीफ दूसरों को भी तकलीफ, ऐसा जीवन जिसने महाप्रभु की कथा नहीं सुनी, भगवान के बारे में सुना नहीं, शरण नहीं गया।
श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास इहा सवा श्री चरण शिरेवंदी निज धन जन्म लीला गायला कृष्ण दास।
सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, यही मेरा धन है। कल हमने संक्षिप्त रूप में थोड़ा चर्चा किया, सबसे बड़ा धन क्या है, किसी को याद है? हाँ, कृष्ण पूजा, कृष्ण स्मरण और कृष्ण सेवा। सचमुच में चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है? अगर किसी ने चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया है, गौड़ीय वैष्णव, गौड़ देश में प्रकट हुए महाप्रभु, तो जो उनके अनुयायी हैं उनको हम कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। तो अगर हम कहते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और चैतन्य महाप्रभु को हमने स्वीकार किया है, वो कृष्ण से अभिन्न है, राधा कृष्ण ना है अन्य, तो कम से कम ये पांच चीज समझ में लेना चाहिए। अगर ये पांच चीज नहीं है तो आप गौड़ीय नहीं है, आप चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं कहला सक कहलाया जा सकता। तो क्या पांच चीज? चैतन्य मंजूषा नाम के एक ग्रंथ में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महान आचार्य ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान क्या था इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय में? बोले पांच चीज था, आप याद रखिए, पांच चीज चैतन्य महाप्रभु का योगदान। वो एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजे शतनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पित श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः नापरः। बोले पांच चीज महाप्रभु का योगदान, और जो महाप्रभु का अनुयायी है ये पांच चीज उसको पंच प्राण होनी चाहिए। पहला क्या है? आराध्य भगवान व्रजेश तनयः, हमारा सर्वश्रेष्ठ आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो हमारे आराध्य देव है। तो ये सबसे पहला क्यों? एते चामशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। सचमुच में जन्माद्यस्य यतः, ये कृष्ण कौन है? अवजानंति मां मूढ़ा मानुषीं तनुवाश्रितम् परम भावम अजानंतु। मूढ़ व्यक्ति लोग उन्हें मामूली व्यक्ति समझ बैठते हैं, कुछ लोग समझते हैं वो बहुत बड़े राजनीतिक थे, कोई समझता है यदुवंश के एक बड़े राजा थे, कोई समझता है बहुत बड़े योगी थे, कोई समझता है शक्तिशाली कोई व्यक्ति थे, कोई समझता है कि वो विष्णु के अवतार थे। पर भागवत कहता है वो कौन थे? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जिससे सब कुछ निकलता है, सारे विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, रामादिषु मूर्तिषु कला न्यमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत्, दशावतार जो हुए वो अवतार हैं, पर अवतारी कौन है जो अवतार लेके आया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गोविंदम आदि पुरुषम। ये समझ भागवत जो देती है, ये समझ महाप्रभु के अनुयायियों को साफ साफ क्लियर। सारे अवतारों को हम सम्मान देते हैं, पूजते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो नाना अवतारम करोत भुवनेशु मृडयंती युगे युगे, अलग अलग संभवामी युगे युगे, हर युग में आते हैं, पर अवतारी जो हैं वो कृष्ण है। विष्णु के भी वही है स्रोत, राम नरसिंह वामन मत्स्य कूर्म वराह सब कोई। एक बार मैं शायद बताया हूं आपको, एक बार मैं रिक्शा में जा रहा था, ऑटो रिक्शा में कुरला, मुंबई में, बहुत ट्रैफिक के बीच में वो रिक्शा ड्राइवर ने मेरे से पूछा, महाराज एक प्रश्न पूछूं। तो बोला क्या? बोला राम बड़ा कि श्याम बड़ा? मैं बोला अरे भाई तूने बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछा है, तो सिद्धांत चर्चा करना पड़ेगा, ये तो भागवतम क्लास में बैठ के भी लोग सो जाते हैं और तू रिक्शा चलाते चलाते कैसे सुनाऊं तेरे को। फिर मैं सोचा कैसे समझाऊं इसको, फिर मैंने देखा उसके रिक्शा में बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टिकर, और सब स्टिकर अमिताभ बच्चन के, अलग अलग पिक्चर के फोटो। तो मैंने पूछा, मैं उत्तर देने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछूं क्या? मैं बोला हाँ बोलो महाराज क्या चाहिए। बोला ये अमर अकबर एंटोनी का एंटोनी बड़ा है या शराबी बड़ा या डॉन बड़ा या बड़ेनिया बड़ा, और भी सारे बहुत सारे थे, विष्णु सहस्त्र नाम जैसे सारे सहस्त्र नाम लिया। बोले ये सब जो हैं इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा? कूली बड़ा। तो सब बोल के पूछा कौन बड़ा। तो रिक्शा चलाते चलाते 5 सेकंड के बाद रिक्शा को एकदम साइड में कर दिया, खड़ा कर दिया। मैं बोला अभी कुछ तो होने वाला है, पीछे मुड़ के बोला समझ गया दोनों एक ही है ना। मैं बोला एकदम सही, सब वही है तेरा प्रिय अमिताभ, पर अलग अलग पिक्चर में अलग अलग पात्र लेके आता है वो। और तुम जब देखने जाते हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे कूली हो, चाहे डॉन हो, अरे ये हमारा ही प्रिय हीरो है। इसी तरह से जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये ते चांश कलाप उप कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उनके सारे जब अलग अलग रूप से अवतरित होके आते हैं, शाश्वत नित्य शाश्वत अवतार है, अवतार भी शाश्वत है, हरेक का अपना अपना वैकुंठ धाम है, पर उनके आदि जो हैं, जैसे एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती जलाओ, प्रकाश एक ही है पर मूल अगर जो मोमबत्ती है वो एक ही है, इस तरह से वो स्रोत जो है वो कृष्ण है। तो ये समझ, ईश्वर में और परम सत्य में अंतर है। ईश्वर मानी नियंत्रण करता, नियंत्रण करना एक अंग है भगवान का, पर भागवत के प्रथम मंगलाचरण में प्रणाम किए हैं परम सत्य को, सत्यम परम धीमहि। तो यह चैतन्य महाप्रभु का के अनुयायियों का एक साफ समझ है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरा, तद्धाम वृंदावनम, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये दूसरा चैतन्य महाप्रभु का योगदान। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही, तो नाम का प्रचार करने हेतु और नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम देने हेतु चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो, उनकी लीला में पैदा होने, कैसे 13 महीने तक गर्भ में रहे अपनी मां के और प्रकट हुए चंद्र ग्रहण के दिन, जहां पूरी दुनिया भगवान का नाम ले रहे थे, उस समय जन्म लिए, जानबूझ के चुन के उस जन्म, तो जिस लिए उद्देश्य से जन्म लिए, पूरा लोग हरिनाम ले रहे थे उसी समय जन्म लिए, और बाल्य अवस्था में भी रोते थे वो, जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको कुछ करने कुछ प्रयास करते हैं माताएं कुछ चुप करने के लिए, तो सारी स्त्रियां पड़ोस अड़ोस पड़ोस के आ जाती थी, बहुत अच्छे थे देखने में, बहुत सुंदर थे, गौर सुंदर, तो उनको चुप कराने का प्रयास, कुछ भी करो रोते रहते थे, पर एक चीज करने से चुप हो जाते थे और मुस्कुराने लगते थे, हरी 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 हरी, हरी का नाम लिया तो चुप हो जाते। तो इस तरह से हरिनाम सबके मुंह से निकलवाते थे बाल्यपन उस समय से जन्म से ही। तो ये दूसरा योगदान तद्धाम वृंदावन। फिर रम्या का चिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। बोले सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, सबसे महान भक्त भगवान के कौन है? जिस तरह से गोपियों ने श्रीमती राधा रानी के नेतृत्व में जो सेवा करती है उससे बढ़कर कोई भक्त नहीं है। भक्ति है तो उनकी। बृहत भागवत भागवतामृत नाम के ग्रंथ में श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत सुंदर से इसका वर्णन किया है कि नारद मुनि ढूंढते जाते हैं सबसे विशेष कृपा पात्र भगवान के कौन है, जिसको सबसे ज्यादा कृपा मिली, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो एक ब्राह्मण के यहां जाते हैं, बहुत अच्छा ब्राह्मण, बड़ा शुद्ध ब्राह्मण, बहुत बड़ा दानी। वो ब्राह्मण से विचार, रो तू तो बड़ा सबसे ज्यादा कृपा पात्र। बोले मैं नहीं हूं, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा एक राजा है, अरे वो दान जो देता है मानना पड़ेगा। उसके पास जाते वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, अरे मेरे पास क्या धन है, बस जैसे एक ज्यादा एक करोड़ दस करोड़ होगा मेरे पास, इंद्र मेरे से बड़ा है, वो इतना बड़ा दान करता है। फिर नारद मुनि इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र बोलता है ठीक है मैं दान तो देता हूं, क्या करूं वो तो मेरा काम है, थोड़ा बहुत कर लेता हूं, पर मैंने भगवान के प्रति कितना अपराध किया, भागवतम नहीं पढ़ा तुम? नारद मुनि को पूछा तो आपको तो मालूम है भागवतम में क्या क्या किया मैंने, सब पुराणों में क्या क्या किया, पूरा हिस्ट्री है उधर, कुंडली मेरा है उधर। बोले मैं भक्त नहीं हूं, तेरे से भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास जाओ। अरे भक्त हो तो ऐसा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक है मैं तो पूजा करता हूं पर मैंने भी बहुत बड़ा अपराध किया, भागवतम में नहीं पढ़ा दशम स्कंद के 14 अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला, मैंने मामूली समझ बैठा, बहुत बड़ा अपराध किया। एक भक्त का लक्षण है अपने अंदर केवल कमियां ढूंढता है और दूसरों में अच्छे गुण देखना, एक वैष्णव का लक्षण। दुनिया में लोगों का उल्टा लक्षण है, गधे से गधा जैसा आदमी भी अपने अंदर सारा अच्छे गुण देखता है और दूसरों में गलती ढूंढता है। तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं नहीं शिवजी महान है, मेरे से भी श्रेष्ठ है, हमेशा स्मरण करते रहते हैं भगवान, ध्यान में लगे रहते हैं। शिवजी के पास जाते हैं, शिवजी बोलते हैं ब्रह्मा जी ने जो भी बोला एकदम सही है पर गलत एड्रेस पे भेज दिया आपको। बोले माए नहीं, अरे बाणासुर के साथ मिलकर मैंने झगड़ा किया भगवान श्री कृष्ण से, आपको मालूम नहीं? और इस तरह से बहुत सारे अपने भी बताते हो कमियां और बोलते हैं नहीं भक्त है तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। तो प्रहलाद के पास जाते, प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ मैं तो सिर्फ स्मरण करता हूं बैठ के, कुछ काम नहीं करता, सेवा नहीं करता, मैं जहां भी बैठता था सिर्फ स्मरण करता था बस। सेवा करना है तो हनुमान जी, क्या सेवा किया उन्होंने, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तो किया प्रभु रामचंद्र की सेवा किया पर वो चलेगा, मैं अभी तक यहीं बैठा हूं, प्रेम होता तो क्या होता था। बोले मैं प्रेमी नहीं हूं, मैं भगवान की सेवा करता था पर पांडव मेरे से श्रेष्ठ हैं, भगवान उनकी सेवा करते थे, मैं तो भगवान की सेवा हमेशा तत्पर रहता था पर भगवान इतने प्रिय थे, पांडव इतने प्रिय थे भगवान को कि अर्जुन के सारथी बने, युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में उन्होंने चरण धोया सब अतिथियों का। बोले ये हमारे लोग हैं। हनुमान जी कहे मैं भगवान को अपना मानता हूं पर भगवान पांडवों को अपना मानते हैं, ये उनकी महानता है, उन वो कृपा पात्र है। पांडवों के पास गए, बहुत बड़ी कहानी है उसको संक्षिप्त में करूंगा, पांडवों ने बताया कि हम भक्त नहीं है, हमने कितना भगवान को बेचारे को बहुत तकलीफ दिया, पांडव सचमुच में हमसे श्रेष्ठ हैं यादव यदुवंश के द्वारकावासी, द्वारकावासियों के पास गए, बोले द्वारकावासी बोले यार हम तो हम लोग हमारे में एक एक मामूली व्यक्ति मानते हैं उसको, उनको ज्यादा नहीं, हमसे सबसे श्रेष्ठ है उद्धव, भक्त हो तो उद्धव जैसा। एकदम जो महत्वपूर्ण सेवा है जो कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकते, वो सेवा उद्धव को देते हैं। उद्धव 24 घंटे भगवान के साथ रहता है, वो केवल वो कपड़े पहनता है जो भगवान का निर्माल्य है, वो केवल वो हार पहनता है जो भगवान ने निकाला है, देखने में भी वो भगवान जैसे ही लगता है, पूरा ऐसे ही कपड़े ऐसे ही उन्हीं का जो उपयोग किया हुआ वस्त्र ही पहनता है। सबसे प्रिय है पूरे द्वारका में उद्धव। तो उद्धव के पास गए, उद्धव ने कहा हां एकदम सही बोला, पूरी दुनिया वही कहती है और मैं भी वही समझता था। कब तक? जब तक भगवान ने मुझे वृंदावन नहीं भेजा। जिस दिन मैं वृंदावन गया तब मुझे समझ में आया मेरे हृदय में भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, भक्त है तो गोपियां। उनकी जो पागलपन है कृष्ण के प्रति, ओहो रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु का योगदान है। उन्होंने बताया भक्ति करना है तो गोपी भर्तुः पदकमलयोर् दास दासानुदास। फिर तीसरा चौथा आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। कोई अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहता है और वो भागवत नहीं पढ़ा है, उसके घर में भागवतम भी नहीं है, नहीं है तो खरीद लो आप, फिर अपने आप को गौड़ीय मत कहो। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी को अपने आप को मानना और भागवतम का अध्ययन न करना तो फिर वो कैसा भक्त है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, तो ये दूसरा चौथा महाप्रभु की शिक्षा है कि सारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ प्रमाण शास्त्र का सार जानना है तो भागवतम पढ़ो, क्योंकि भागवतम में पूर्ण रूप से आत्मा को संतुष्टि करने का विधि बताया गया है। शुद्ध भक्ति अहैतुकी अप्रतिहया अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जिस व्यक्ति ने सारे वेदों की रचना की वो जब संतुष्ट नहीं थे तब नारद मुनि ने उनको प्रशिक्षण दिया और कहा कि आप भागवत की रचना करो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी, आप भागवतम उनके प्रभुपाद जी के भागवतम का पुस्तक देखेंगे, 41 पन्नों में इंट्रोडक्शन दिया है चैतन्य महाप्रभु की जीवन और शिक्षाएं संक्षिप्त रूप में। भागवत के प्रचारक गौरांग महाप्रभु, व्यक्ति भागवत, पुस्तक भागवत समझना है तो व्यक्ति भागवत का जीवन पढ़ो, तब समय समझ में आएगा पुस्तक भागवत क्या होता है। गिया भागवत पढ़ो भागवत स्थाने, स्वरूप दामोदर ने बोला गदाधर पंडित को नहीं, श्रीनिवास आचार्य को, बोले तुम अगर भागवत पढ़ना है तो व्यक्ति भागवत से पुस्तक भागवत सुनो, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, और अंत में प्रेमापमार्थो महान, प्रेमापमार्थो महान पुरुषार्थ। यहां पता नहीं मराठी में मुझे नहीं मालूम, पर मैं जब छोटा था हमारे दक्षिण भारत में बम्बई बेंगलोर में गांव में भी कोई भी कुछ करता था तो पूछते थे इसका पुरुषार्थ क्या है, कुछ काम कर रहे हो पुरुषार्थ क्या है उसका, मतलब क्या मिलेगा क्या इसमें, जो कुछ भी हम करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, क्या मिलेगा इसमें। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं वेदों में, पर चारों पुरुषार्थ जो है उसमें स्वार्थ है, माला का माला का भेटना मेरे को क्या मिलेगा इसमें। पर पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, प्रेमा अपमार्थो महान, पंचम पुरुषार्थ, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। पूरी दुनिया एक तो भगवान को जानती नहीं, नास्तिक लोग है ज्यादा से ज्यादा लोग, और थोड़े लोग जो आस्तिक हैं डर के मारे भगवान की भक्ति करते हैं। अच्छा है डर से कर रहा तो अच्छा है, भगवान से नहीं डरेंगे और किसे डरेंगे। फूल्स डेयर वेयर द एंजल्स फियर टू ट्रेड, मूर्ख लोग उन चीजों में डरते नहीं। तो डर अच्छा है, पर क्या है, नहीं करूंगा भक्ति नहीं करूंगा तो नरक में जाऊंगा, भक्ति नहीं करूंगा तो अधोगति होगी मेरी, बीमार हो जाऊंगा, तकलीफ होएगा, तो डर के मारे भक्ति करते हैं। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का मोटिवेशन, प्रेरणादायक चीज। तो कुछ लोग डर के मारे भक्ति करते हैं, अच्छा है, अच्छा है, ना करने से उतना अच्छा है डर के मारे कम से कम भक्ति करना, नहीं तो नरक में जाएंगे, नहीं तो पुनर्जन्म के चक्कर में रहेंगे इत्यादि, कि नीच योनि में चले जाएंगे, इसीलिए हमको भक्ति करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य योनि कम से कम मिलेगी। उससे भी श्रेष्ठ प्रेरणादायक उद्देश्य है कि भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, उच्च एक अच्छा योनि मिलेगी, उच्च कोटि में जाएंगे इत्यादि, लाभ क्या मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, जो दान देगा उसको कम से कम, जो दूसरों को पानी पिलाएगा कम से कम वो अगले जन्म में बिना पानी के प्यासा नहीं रहेगा, जो खाना खिलाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो दूसरों को कपड़ा देगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। फायदा है, लाभ है, उससे भी श्रेष्ठ है कर्तव्य के रूप में। भगवान इतना कर रहे हैं, हम इतना भी नहीं कर सकते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। प्रेम का मतलब है आदान प्रदान हो या ना हो, आश्ली सेवा पादरताम विनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। प्रभु आप चाहे मुझे गले लगाओ, आप चाहे मुझे लात मारो, आप चाहे मेरी अवहेलना करो, पर मैं एक कुत्ते के समान दुम हिलाकर आपके चरणों में आऊंगा क्योंकि आपके अलावा मैं और किसी को भगवान के रूप में, मेरे प्रभु के रूप में, मालिक के रूप में, स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आप जैसे भी व्यवहार करो आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे स्वामी हो, ये प्रेम है। प्रेमा अपमार्थो महान। तो ये जो है, एक सन्यासी एक बार हमारे मंदिर में आए थे, वो बोल रहे थे कि दो भक्तों के बीच में वार्तालाप उन्होंने सुना। एक भक्त कह रहा था हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो दूसरे ने बोला आई एम स्ट्रगलिंग इन द मेटीरियल वर्ल्ड, मैं संघर्ष कर रहा हूं इस भौतिक संसार में। तो पहले वाले ने पूछा संघर्ष कर रहे हो संसार में रहने के लिए या संसार से निकलने के लिए। संसार में, हरे कृष्ण, संसार में रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और संसार से निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष तो करना ही है, मनस्वस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। पापी पेट का सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान, संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो इस संसार में रहना भी है तो भी संघर्ष करना पड़ेगा और इस संसार से निकलना है तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, पर दोनों संघर्ष में जमीन आसमान का अंतर है। कुत्ते बिल्ली भी संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, पर मनुष्य योनि मिला और उसमें सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा, क्या लाभ। संघर्ष तो है ही, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपस्या करनी है, पर किस तरह की तपस्या, ताकि भगवत प्राप्ति हो। तो तो क्या किस प्रकार का संघर्ष हमें करना चाहिए? जैसा कल हमने चर्चा किया, प्रभु बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, स्वामी बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस दुनिया में, करोड़पति बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर संघर्ष जो और मालिक बनने के लिए, पर हमारा स्वरूप है सेवा का, जीव का स्वरूप है दासत्व, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जिस प्रकार से अग्नि से उसकी उष्णता और उसका प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से हरेक जीव से उसका जो दासत्व करने की प्रवृत्ति है उसको निकाला नहीं जा सकता। कोई आप में से कह सकता है हाथ उठा के कि मैं दास नहीं हूं, मैं बॉस हूं? मेरे को लगा प्रभु जी हाथ उठा रहे, थोड़ा सर खुजला है वो बस। हर एक व्यक्ति दास है, कोई इंद्रियों का दास है, कोई परिवार का दास है, कोई पत्नी का दास है, कोई पति का दास है, कोई बच्चों का दास है, कोई समाज का सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई मानवता का सेवा कर रहा है, हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है। सेवा किए बिना रह नहीं सकते, पर और कई लोग अपने शत्रुओं की सेवा कर रहे हैं। कौन से शत्रु? छह शत्रु जो हृदय में बैठे हुए हैं उनके दास है वो, और वो अज्ञानतावश कहते हैं कि मैं बॉस हूं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के दास है वो। कामादि नाम कति न कति धा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जाता मई न करुणा न त्रुपा नोपशांति। पर ये स्वामी कैसे हैं? न करुणा न त्रुपा नोपशांति। अगर सरकार की सेवा करते हो तो कम से कम संडे को छुट्टी मिलती है, सैटरडे को हाफ डे मिलता है, पर काम क्रोध लोभ मोह जो है 24 घंटे काम कराते हैं आपको, छुट्टी नहीं है। संडे के दिन थोड़ा ज्यादा काम कराते हैं टीवी के सामने बैठा के, छुट्टी नहीं है, 24 घंटे सेवा करना पड़ेगा, सैटरडे को एक्स्ट्रा डे, संडे फुल वर्किंग डे, रात को सोते वक्त भी सपने में भी काम कराता है। और रिटायरमेंट मिलता है क्या? रिटायरमेंट नहीं, मरते दम तक रिटायरमेंट नहीं, चूस चूस के लेता है। पगार क्या देता है? कुछ नहीं, और काम कराना। और शांति नहीं, और भड़काता है और अंत में गाली देता है, कुछ सेवा ठीक से नहीं किया, मूर्ख कहीं का, फालतू नौकर है तू, करोड़ों जन्मों से उसकी सेवा कर रहे हैं फिर भी छुट्टी नहीं, फिर भी मन की शांति नहीं, ओत उत नहीं है और हमको भी परेशान बांध के रखा हुआ। ऐसे मालिक की सेवा कर रहे हैं हम कृष्ण को छोड़ के, जो हमें वैकुंठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ। ये हमारी मूर्खता है। सेवक का नाम सुन के लोग डरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर मैं सर्वेंट, किसी ने बोला कि मैं सर्वेंट हूं, सेवक हूं, तो घृणात्मक रूप से लोग देखते हैं। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, आप कौन हो? अपने आप इतना प्रचार कर रहे हो, आप कौन हो? मैं बोला मैं कृष्ण का दास हूं। और बाद में बोले, नहीं, कृष्ण का दास बनना बहुत ऊंची बात है, मैं प्रयास कर रहा हूं बस। कोई राजा का सेवक है तो राजा जो भोग उपभोग करता है, उसके बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, डांस वांस, तो सेवक भी बगल में झाड़ू मार क्या बोलते हैं चामर करते, वो भी देखता है पूरा। राजा जो खाता है बच्चे, उसके बचने के बाद वो भी खाता है, वही महल में एसी है तो वो भी एसी का अनुभव करता है। राजा रथ पे जाता तो वो भी पीछे बैठा रहता है, रथ पे जाता है वो भी। जो राजा उपभोग करता है वो सब सेवक भी उपयोग करता है, क्योंकि राजा का सेवक है वो, 24 घंटे उसके साथ रहता है। पर उसे भूलना नहीं चाहिए, जो जो राजा करता है वह भी करता है, इसका मतलब मैं राजा हूं ऐसा नहीं सोचता हूं। उसे मालूम है मैं कौन हूं, मैं राजा का दास हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि राजा के साथ रहता हूं, तो जो भी राजा करता है उसको मुझे भी मिलती है। तो ये सौभाग्य है, भगवान का दासत्व जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर दुर्भाग्यवश हम नहीं समझ सकते। फिर हमें लगता है ठीक है ये आपने तो बहुत अच्छा बात कहा ठीक है, पर सचमुच में भगवान की दासत्व करके संतुष्टि मिलेगी क्या? कल एक व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे, इतना बड़ा प्रवचन सुनने के बाद उनको अच्छा लगा, पर एक डाउट आया, बोले भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं कि मेरे सेवा करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना भगवान को, क्योंकि पूरी दुनिया वही बोलती है मेरे सेवा करो। तुम्हें बोला नहीं, ये जो भगवान पूछ रहे हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे दास बनने के लिए वो तैयार है, और तुम्हारी भलाई है इसमें। एक बार प्रभुपाद के पास एक आदमी आया, एक भक्त आया, और उसने कहा कि प्रभुपाद जी एक बात बोलूं मैं सचमुच में, आप बड़े बड़े बात कह रहे हो, मेरे को सब जमता है, कड़त है पर वड़त ना है। वो बोले कि मैं सच्ची बताऊं, मैं स्वार्थी हूं, मेरा स्वार्थ नहीं निकलता, जितना भी आप बोलो प्रवचन सुनता हूं पर मेरा स्वार्थ नहीं जाता। तो प्रभुपाद ने बोला अरे स्वार्थी बनो, पर स्व अर्थ तुम कौन हो पहले जानो, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, स्वार्थी बनो, स्व अर्थ तुम्हारी सबसे भलाई क्या है वो करो, आत्मा की भलाई के बारे में सोचो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, आत्मा की भलाई किसमें है, नते न तो स्वार्थ गति में विष्णु। और प्रभुपाद ने सुंदर उदाहरण दिया कि देखो एक बार सारे इंद्रियों ने स्ट्राइक किया, बोला हम पेट को खाना नहीं, ये बहुत आलसी है, हम लोग इतना काम करते हैं, मैं हाथ बोला मैं इतना काम करके उठाता हूं, पैर बोला मैं इतना चलता हूं, मुंह बोला मैं चबाते रहता हूं दिन भर, आंख बोला मैं देखता रहता हूं 24 घंटे सोने भी नहीं मिलता ठीक से, कान बोला मैं सुनता रहता हूं, ये पेट बैठ के खाता रहता है कुछ नहीं करता चुपचाप मोटा हो रहा है बस। तो सारे इंद्रियों ने बोला अभी धरना करेंगे बस, अभी पेट को नहीं खिलाएंगे, हम लोग काम करते चुपचाप बैठ के मोटा हो रहा है। तो सबने स्ट्राइक किया, बोला कोई काम नहीं करेगा। एक दिन हुआ, कल हमने उसका अनुभव किया, एक दिन पानी खाना नहीं खाए तो क्या होता है, तीन दिन उसका मल्टीप्लाई करो, तीन दिन के बाद हाथ बोला हे अभी उठते नहीं पाता है मैं, पैर बोला मैं तो चलने का तो बोलो ही मत मेरे को, उठने का भी मुश्किल हो रहा है, आंख बोला मेरे को देखने से कुछ समझ में नहीं आता क्या देख रहा हूं, कान बोला हां मैं भी सुन समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे लोग, कुछ समझता नहीं मेरे को। तो सब लोगों ने फिर से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाया, फिर से बोले अभी कुछ करना चाहिए, बोले एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि पेट खाता रहता है, वो खा के सबको भेजता है, वो जो हम जो भी खाते हैं खिलाते हैं उसको अच्छे तरह से हजम करके वो भेजता है, अगर उसको नहीं डाले ना तो हम सब मर जाएंगे चार दिन में, फटाफट भेजो शुरू करो। तो प्रभुपाद बोले ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से धड़ डाली पत्ता फूल फल में खाना पहुंचता है, जिस प्रकार पेट में खाना डालने से सारे इंद्रियों दष्ट पुष्ट हो जाते हैं, इसी तरह से भगवान जो सारे सृष्टि के जड़ हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, उनको अगर यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम समसिद्धिर हरितोषणम, अगर भगवान प्रसन्न हुए तो अपने आप हम भगवान के अंग हैं, सारे अंग संतुष्ट हो जाएंगे हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये क्या जबरदस्ती कर रहे हैं हमको सेवा के लिए बोल रहे हैं, हमारी भलाई के लिए। अगला प्रश्न उठता है ठीक है प्रभु जी शत्रु आके बैठे हुए हैं इसको निकाले कैसे, ये लोग जन्म जन्म से आके गेस्ट लोग बैठ गए, वो लोग गेस्ट नहीं, वो लोग पहले अभी तो वो ओनर बन गए अभी घर के। उसके लिए प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बोले अगर आपके घर में कोई अतिथि आए जो अवांछित हो और आप उसके साथ झगड़ा नहीं करें, भाई निकाल यहां से नहीं आने का मेरे घर में, प्रेम से निकालना है उनको, क्या करोगे आप? आपके घर में कोई अतिथि आया है, 3 दिन से ज्यादा रहने लगा है, आया था 3 घंटे के लिए और बोला बस अभी हूं ना हो भाई, जा आ ही नहीं रहा, 3 महीना हो गया। निकालने का तरीका क्या है मालूम? सज्जन तरीका, एक तो कान पकड़ के निकाल सकते हैं, गाली देके भगा सकते हैं, पर जो सज्जन लोग ऐसा नहीं करते। क्या करना है? खाना बंद करो उसको, बस खिलाना बंद करो, अपने आप खाना, जहां खाना मिलेगा वहां चला जाएगा। अगली बार मैं आपके घर में आऊंगा तो अगर बहुत ज्यादा मैं प्रवचन देने लगा तो बोलना आप, बोले प्रसन्न नहीं मिलेगा। तो जब खाना नहीं मिलता है तो व्यक्ति और कहां जा, खाना मिलता है वहां जाता है, क्योंकि हम जो काम क्रोध लोभ मोह मदमाचर्य को करोड़ जल्बों से खिला पिला के डकार मरवा रहे हैं हम लोग उसको, भरपेट जब भी मांगता है, जब भी मांगता है उसको खिलाते हैं हम लोग, ये हमारी समस्या है। उसको खिलाना बंद करो, फिर वो भाग जाएगा यहां से। पर हम उनके दास हैं। एक चीज आप ठंडे दिमाग से, अभी जो बोलने वाला हूं ना, अभी तक आप नहीं सुने तो चिंता मत करो, अभी तक कुछ नहीं सुने तो चलेगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। बिना स्वामी बने आप दास नहीं बन सकते, और बिना दास बने आप स्वामी नहीं बन सकते। समझ में आया? नहीं आया, मुझको भी नहीं आया, बताता हूं। बिना स्वामी बने आप दास नहीं बन सकते, अच्छे दास नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या समझ लीजिए आप, अभी इंद्रियों के हम दास हैं, जब तक इंद्रियों के स्वामी नहीं बनते, मन के स्वामी नहीं बनते, तब तक कृष्ण का दासत्व करना बड़ा मुश्किल है। जैसा हम भूख लगा गए, हम सड़क पे जा रहे हैं और सूंघे कुछ मिठाई का, सड़क पे कुछ मिठाई बन रहा है और हमको उसका सुगंध आया, तो इंद्रियों से या आंख देखती है और मन को कहता है वाव खा ले, फर्स्ट क्लास मिठाई, तेरा फेवरेट आइटम है, मालूम है कितना खाते। बुद्धि कहता है ए तुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला मत खाना, बाद में सोच ले इंजेक्शन मिलने वाला है। ओ सही बात है, सही बात है। मन बोलता है नहीं मतलब पाइजे, बुद्धि बोलता है आहा नहीं बैठना। तो अगर मन बुद्धि का दास नहीं है तो फिर फंस गए हम। तो अगर दास बनना है तो आपको मालिक बनना पड़ेगा, प्रभु बनना पड़ेगा, स्वामी बनना पड़ेगा। किसका? गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी बनना पड़ेगा। स्वामी बने बिना आप दास, अच्छे दास नहीं बनेंगे, और दास बने बिना स्वामी नहीं बन सकते। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, और इंद्रियों को संयम करना है तो जब तक इंद्रियों को, इंद्रियों के मालिक कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक आप इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते, उनको दासत्व भगवान की सेवा में लगाना है। वाचो वेगम मनस वेगम क्रोध जिह्वा उदरोप एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। सबसे अच्छा स्वामी कौन है? जो अपने सेवकों का दास है। गुरु जो है अपने शिष्यों, शिष्य उनको स्वामी मानते हैं, पर गुरु कहता है मैं आप सबका सेवक हूं। जो इंद्रियों का स्वामी है वो अच्छा सेवक बन सकता है दूसरों का, नहीं तो उनका उपभोग करेगा, क्योंकि वो खुद भी मन और इंद्रियों का और काम क्रोध का दास है। वो तो वो जो मांगेगी वो अपने सेवकों को भी अपने इंद्रियों की सेवा में लगाएगा। तो इसीलिए दास बनना है तो मालिक बनना जरूरी है, स्वामी बनना जरूरी, गोस्वामी, और गोस्वामी बनना है तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों की सेवा में लगाओ। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। कैसे? हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरनिता। हरिनाम इतनी शक्तिशाली है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अलग से कोई अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धालु प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर हरिनाम का कीर्तन करो, बस कलयुग में और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर नियमित रूप से श्रद्धा भाव से और बड़ी तीव्रता से श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर हरिनाम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम इंद्रियों के स्वामी गोस्वामी बन रहे हैं और तब हम अच्छे दास बन सकते हैं भगवान के। तब प्रेम उत्पन्न होगा और जब प्रेम से सेवा करेंगे, अभी किसी उद्देश्य से सेवा कर रहे हो पर धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम में ही सेवा जब करेंगे तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये इसी चैतन्य महाप्रभु का देन है। पांच चीज, प्रेमापमार्थो महा। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं महाप्रभु से कि जिस लिए आप अवतरित हुए, जिस लिए आप देने के लिए आए, कृपा पूर्वक हमें वो शक्ति दीजिए, वो बुद्धि दीजिए समझने के लिए, और बुद्धि से समझने के बाद उसे उतारने की शक्ति दीजिए। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार चरण सा। तो महाप्रभु की कृपा से, परंपरागत श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिली है, उसे हम स्वीकार करेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा। और तब ये गौर पूर्णिमा एक सामाजिक उत्सव न होकर सचमुच में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक उत्सव, योग्य मनाने वाला उत्सव बन जाएगा और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी। अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम बाहर हमारे बाल क्या बोलते हैं, नहीं बाल कलाकार और वरिष्ठ वैष्णव कलाकार दोनों बाहर आतुरता से आपकी सेवा के लिए खड़े हुए हैं। तो कृपया हम लोग तुरंत वहां जाएंगे और दर्शन करेंगे और तत्पश्चात आरती के लिए यहां आएंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री निताय गौर चंद्र की, निताय गौर प्रेमानंदी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।